ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज फिर एक मुद्दे को उठाते हैं, एक ऐसे आस्पेक्ट को लेने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसको सही परिपेक्ष में ज्ञान को समझते हुए कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि जो हो गया है, जो बीत गया है, उसे गुजर जाने देना चाहिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन क्या हम सच में क्षमा या भूल सकते हैं? जो भी कुछ हमारे साथ हुआ होता है, हम उसे साथ 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 लिए चलते हैं, या हमसे ही कई बार बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, हम जानते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि उसे हम ठीक कैसे करेंगे। आज इसी एस्पेक्ट को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ हैं आज लंदन से आए बस सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
जयंती बहन, अगर हम देखते हैं तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूलो और आगे चलो, ये एक ऐसी युक्ति है जो कब से भारतीय अध्यात्म कहें या हमारे बड़े बूढ़े हैं वो कहते आ रहे हैं और हम समझते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन कभी अगर हम देखें, हम अपने आप को ये तो कहते हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया, लेकिन ना तो हम फॉरगेट कर पाते हैं और ना ही कम्प्लीटली फॉरगिव कर पाते हैं। What is actually meant by forgiveness?
मैंने इस बात पर जो अनुभव किया है और विचार किया है वो इस प्रकार से है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की गलतियां की है, परंतु भगवान ने फिर भी मुझे क्षमा करके, स्वीकार करके मुझे फिर भी प्यार भी दिया है, शक्ति भी दी है और आगे का रास्ता भी बताते रहे हैं और मुझे कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज भी दी है। तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, भगवान ने मुझे क्षमा किया है। तो यदि किसी और ने मेरे साथ कुछ इस तरह की गलती की हो तो जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है भगवान के द्वारा, मेरी भी जिम्मेवारी होती कि मैं उसी प्रकार से औरों को भी फॉरगिव कर सकूं, ताकि उनों को भी मैं मदद करके और आगे बढ़ने में कुछ प्रकार का सहयोग दे सकूं। कई प्रकार की बातें आती है। एक बारी एक व्यक्ति का मैंने देखा था कि बार बार वो गलती करती रहती थी और बार बार उस समय तो कहती थी कि हाँ, मैंने रियलाइज किया है, मैंने गलती की है, मैं फिर नहीं करूंगी, परंतु फिर दोबारा वो हो जाता था। तो एक घड़ी ऐसे आई जो मैंने सोचा कि मैं कहाँ तक ये विश्वास कर सकती कि हाँ, इसको रियलाइजेशन हुई है और फिर दोबारा नहीं होगा। फिर मैंने उस पर और विचार किया तो मैंने सोचा कि जजमेंट कैपेसिटी मेरे हाथ में नहीं है, जो उसका कर्म का लेखा है वो भगवान के पास है, तो मैं उस बीच में न आऊं। उस आत्मा ने जो कुछ किया है और भगवान के पास उसका लेखा है, मैंने अपने को जब उससे न्यारा कर लिया, डिटैच कर लिया, तभी फिर मैं अपने मन को शांत कर सकी और फिर भी उसके साथ व्यवहार कुछ न कुछ चलता रहा है, परंतु मैंने अपने मन को उस हिसाब से शांत किया कि वो आत्मा जाने, भगवान जाने, और वो जैसे भी उसके साथ संबंध हो, हिसाब किताब भगवान के पास है।
वंडरफुल। लेकिन एक बात बताइए, कई बार हमारे वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम न्यारा नहीं कर पाते और वहाँ हमारे साथ अगर हमें लगे कि बार 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 वही मिस्टेक कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कितनी बार हम माफ करेंगे, कितनी बार, कभी तो घड़ा भरता है, पेशेंस का घड़ा भर जाता है, माफ करने का घड़ा भर जाता है, कब तक मैं माफ करता हूँ, कब तक उसका पर्सपेक्टिव देखता रहूं। तो यहाँ जो क्लोज हमारे रिलेशनशिप में है या जो नजदीक है उनके साथ फिर हम कैसे जी सकते?
मैं समझती ये उसी प्रकार से ही बात होंगी कि यदि हमारे समझाने से वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है और उसको खुद अपनी रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो हमें अपने को उस बात से न्यारा मीन्स कोई उसको छोड़ के कहीं चले जाने की बात नहीं है, परंतु जिस तरह से आत्मा शरीर इकट्ठा है, परंतु जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ शरीर से न्यारा, तो मैं शरीर का मालिक होकर के कार्य कर सकती हूँ। इस तरह से कोई भी संबंध में भी यदि हम उसके बंधन में आ जाते हैं, उसमें फीलिंग्स और इमोशंस नेगेटिव आ जाती है, तो फिर उसमें दिक्कत होती, परंतु उस संबंध में भी हम अपने को बुद्धि से न्यारा करें और यही सोचे कि भगवान और वो आत्मा जो कुछ भी उनका हिसाब किताब है भगवान ही देखेगा। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रीति से कोशिश की है और अभी भी मैं थक करके छोड़ नहीं देंगी, परंतु जो मेरे से होगा मैं करेंगी, परंतु मैं उसके खाते के बीच में, मुझे अपना बुद्धि को नहीं चलाना है, मुझे अपनी बुद्धि की एनर्जी को खर्च नहीं करना है।
लेकिन उससे अगर मेरा जो कारोबार है या जो मेरा जो रिलेशनशिप है मुझे नुकसान हो रहा हो, कंटिन्यूअस नुकसान, कंटिन्यूअस मुझे मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो रही हो या मुझे कंटिन्यूअस पेन आ रहा हो, व्हाट शुड आई डू देन?
उस समय मैं ये कहेंगी कि अध्यात्मिकता ये कहती है कि उस बात को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो उसका भी पाप बढ़ता जाए और मेरा भी दुख बढ़ता
हाँ,
जाए,
क्योंकि वो जो भी कर्म करेगा वो उसका उसका फल जो है वो उनको मिलता जाना होगा।
तो यदि मैं उसको चालू रखती चलूं। और बहुत करके इसमें बात आती है अटैचमेंट की। अटैचमेंट के कारण हम उस बात को इग्नोर करते रहते हैं और वो पाप कर्म बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। परंतु कोई घड़ी वो आती है जब हमको सोचना होता है कि इनफ इज इनफ, फिर अभी और आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए।
तो वो फुल स्टॉप की जो बात होती है, बिंदी लगाने की जो
जी
बात है,
जी
तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा। अच्छा, और जो हम ये कहते हैं कि जब कोई मिस्टेक किसी ने की, या चलिए अपने आप से शुरू करते हैं, मुझसे गलती हो जाती है, पहली बात तो ये कि अभी तक तो ये एहसास ही नहीं होता था कि मैंने कभी गलती की, हमेशा ये लगता था कि या तो बाहर से गलती हो रही है और नहीं तो भगवान गलती कर रहा है या सिचुएशन गलत कर रही है, सिचुएशन ही ऐसी है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान में समझ रहे हैं, हमें खुद को एहसास होने लगता है कि नहीं, हमसे कहीं कुछ गलत हुआ है, वो गलती जो है उसकी फॉरगिवनेस, कई बार मैं अपने आप को इतना लो चला जाता हूँ, मुझसे ही जो गलती हो जाती है कि मैं अपने आप से ही इतना शर्मिंदा होता जाता हूँ, तो माफ करने वाला जो एस्पेक्ट है, कब मुझे लगेगा कि मैं कम्प्लीटली अपने आप को माफ कर पाए?
उसमें स्टेप्स आती हैं। गलती की है, मैंने रियलाइज किया है और मैंने परमात्मा से वो माफी मांगी है, और जब परमात्मा के द्वारा मुझे लगता है कि वो मेरा बोझ हल्का हो गया और परमात्मा द्वारा मुझे वो भी शक्ति मिली है जो कुछ परिवर्तन हुआ है, फिर मैं अपने को माफ तब करेंगी जब मैं उस बात को मेकअप कर लेंगी। जो कुछ मेरे संस्कारों के वश वो हमने गलती की है, संस्कारों का मैंने पूरा रीति से परिवर्तन कर लिया, तो वो हिसाब किताब मेरा चुक तो हो सकता, मैं अपने को माफ कर सकती। जब तक वो पास्ट की बातें याद आती रहती है, वो पास्ट मुझे खींचता रहता है, मैं अपने को माफ नहीं कर सकती। परंतु मैं संस्कारों में परिवर्तन लाऊं और पास्ट को फिर मैं भुला लूं तो मैं आगे बढ़ सकती।
जयंती बहन, अगर हम देखें तो पास्ट कभी भूलता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं पाता कि हम पास्ट को भूल पाए। जब हम कहते हैं फगेट, तो हम फगेट क्या करें? उस घटना को जो हो चुका है वो तो नहीं भूलता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई इमोशन शायद हमें उससे बाहर निकलना पड़े।
मेमोरीज अपने हाथ की बात होती है, किन किन मेमोरीज को हम घड़ी घड़ी इमर्ज करते हैं और किन किन मेमोरीज को हम समाप्त करते हैं। तो जो मेमोरीज हमको दुख देने वाली है, हम उन्हों को बार बार इमर्ज करेंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा, हमारी एनर्जी खर्च होती जाएंगी और आत्मा की स्थिति नीचे आती जाएंगी। परंतु जो हमारे बहुत शुभ मेमोरीज है, श्रेष्ठ मेमोरीज है, हम उसको रीइन्फोर्स करके उन्हों को और आगे बढ़ाते जाएं, उससे हमें शक्ति प्राप्त होंगी। तो एक तो फॉरगिव, किसी ने गलती की, हाँ चलो भगवान के पास उसका लेखा है, परंतु मैं भी अपने दिल में उसके प्रति शुभ भावना अब रखूं। मैं फॉरगिव करूं किसी को, वो इनफैक्ट मेरे वश की बात नहीं है, परंतु हाँ मैं ये इतना तक कर सकती कि मैं अपनी बिटरनेस को या कुछ बैड फीलिंग्स को समाप्त करके उसके प्रति कुछ अच्छी फीलिंग्स रखूं, ताकि उसके भी कुछ आगे के लिए अच्छी जीवन बने। तो अपना फॉरगिवनेस का भाव ये है। और बाकी फॉरगेट मीन्स जो मेमोरीज मुझे दुख दे रही है, मैं उस दुख को समाप्त करूं और फिर उन मेमोरीज से मुझे क्या सीखने को मिला, हम वो बात लेकर के और आगे बढ़े।
बिल्कुल जयंती बहन, हमने ये कहा कि अगर मेरे को मेरे हाथ में है कि मैं उन मेमोरीज को इमर्ज करना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन कई बार देखा ये गया है कि जो मेमोरीज मुझे दुख देने वाली है उन्हें मुझे याद नहीं करना होता, वो जैसे ही मैं अकेला होता हूँ वो एकदम से मर्ज हो जाती है। अगेन मे बी आई डोंट हैव द पावर, यू नो, आई फील सो डिप्लीटेड, आई फील सो वीक, दे जस्ट कम एंड टेक ओवर।
इंसान अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता जहां तक मैं समझती, परंतु परमात्मा की शक्ति द्वारा हम इन बातों को चेंज कर सकती हैं। अब तक हमें ये पहचान ही नहीं थी कि परमात्मा के साथ हम समीपता का संबंध किस तरह से जोड़ के रखें। अभी पता चला है, तो जब कोई भी बात इस तरह की आती है तो मैं परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप को इमर्ज करती हूँ और वो मेमोरी के सामने मैं अपने पिता परमात्मा को रखती हूँ, ताकि वो जो दुख की मेमोरी है वो फिनिश हो जाए और परमात्मा की स्मृति मेरे पास रहे। दिस इज अ टूल, यू कैन प्रैक्टिस दिस, तो उससे वो बातें फिनिश होती जाएंगी। और जो मेमोरीज मुझे एम्पावर करती है, जो मेमोरीज मुझे खुशी देती है, उन्हों को हम कायम रखें।
लेकिन जहाँ फॉरगिवनेस की बात आती है कि मैंने आपको माफ किया, ये जो हम कहते हैं कभी अपने वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कहती है, चाहे मन में ही सोच रही है, कहीं ना कहीं ये भाव नहीं होता कि मैं थोड़ी सुपीरियर हूँ, आई हैव द यू नो बिकॉज आई एम एट अ हायर पेडेस्टल, यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई फॉरगिव यू, तो समवेयर आई कीप माई सेल्फ एट अ हायर पेडेस्टल एंड डू आई रियली फॉरगिव दैट पर्सन, हाउ शुड आई फील व्हेन आई से, जब मैं कहूँ कि मैंने आपको माफ किया या मैं माफ करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर एक वो हायर पर डिस्टर्ब पे होता है, तो मुझे क्या फीलिंग हो जब मुझे लगे कि नहीं कंप्लीशन में मैंने माफ किया।
तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले तो मैं देखती हूँ कि मैंने कितनी गलतियां की हैं और परमात्मा ने मुझे किस तरह से माफ करके आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो अब यदि मैं दूसरे को कहती हूँ कि मैं आपको माफ करती हूँ, हिसाब किताब तो आत्मा परमात्मा का, परंतु मैं अभी कहती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आगे से कुछ नवीनता हो, कुछ परिवर्तन हो, और मैं वो शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ ताकि आगे से अच्छी तरह से हमारा संबंध रहे, तो उसमें मैं कोई अपने को सुपीरियर नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी गलतियां की है, मैं ऐसे नहीं हूँ जो संपन्न बनी हूँ, परफेक्ट बनी हूँ, तो वो बात मुझे सदा ध्यान रहती है कि मैं औरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती क्योंकि मेरे में ही कई प्रकार की गलतियां हैं।
और मुझे आई थिंक समवेयर मुझे जयंती बहन फॉरगिव करना इसलिए भी जरूरी है, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू लिव, आई बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू गिव मी पेन, मतलब अगर मैं माफ नहीं करती, अगर मैं उस बैड मेमोरी से बाहर नहीं निकलती तो मैं ही नहीं जी सकती।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भाई ने एक बारी अपनी बड़ी दादी को ये कहा कि मेरे जीवन में मुझे तीन लोगों ने बहुत दुख दिया है और उसमें से दो को तो मैंने माफ कर लिया है, परंतु एक ने इतना मेरे से अन्याय किया है मैं जो मैं उसको माफ नहीं कर सकता। तो दादी ने उसको कहा कि थोड़ा सा भी पॉइजन होता तो सारा कप पॉइजन का बन जाता, उसमें ये नहीं कह सकते कि बस एक बूंद ही पॉइजन की है, तीन बूंद पॉइजन की तो पॉइजन है, परंतु एक बूंद भी पॉइजन की तो पॉइजन ही है। तो इसी तरह से अपने मन में यदि किसी हम एक के प्रति भी कुछ बैड फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि न माफ करना मीन्स उसके प्रति मेरी भावना ठीक न रहे, तो वो जो हमारे मन में पॉइजन है वो मुझे भी आगे के लिए कंफर्टेबल लाइफ जीने नहीं मिलेंगी, परंतु साथ ही साथ हम उस समय ये रियलाइज नहीं करते कि एक के साथ हमारा ठीक संबंध नहीं होने कारण औरों के साथ भी जो मेरा प्यार का व्यवहार होना चाहिए, विश्वास का व्यवहार होना चाहिए, वो नहीं बन पाता।
डेफिनेटली जहाँ कहीं हमारे बचपन के जो संबंध है, जो बचपन में जो घाव हमें मिले होते हैं वो हम जिंदगी भर नहीं माफ किए होते हमने, एंड आई थिंक वी हैव सीन ओवर दिस, यू नो, हमने जो ये प्रोग्राम किया है जयंती बहन, उसमें ये कि वही बात बार बार निकल के आती है कि बचपन का माँ बाप के साथ का रिलेशनशिप या कहीं फ्रेंड्स के साथ के जो धोखे मिले हुए हैं, और वही मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करता है और वही जो है वो बाकी परेशानियों को सामने लेकर आता है।
तो इस कारण से हम अपने को परमात्मा के सामने रखें और जो कुछ भी हमारे मेमोरीज में भरी हुई बातें हैं वो भी हम पाप के सामने रखें, ताकि फिर जो कुछ हमारे, मैं दूसरा शब्द कहेंगे चित, मेमोरी ट्रैक, हमारे चित पर वो जो बातें छपी हुई है वो परमात्मा के प्रेम से, क्षमा से वो साफ हो जाए। आपको याद होगा कई लोग कहते हैं परमात्मा मेरी गलती चित पर न धरो, तो हम अपने लिए तो बाप से ये चाहते हैं, परंतु फिर हम अपने चित पर औरों की गलतियां रख लेते हैं। परंतु यदि हम परमात्मा से वो अपने लिए चाहते हैं, लेट मी डू अनटू अदर्स एज आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ, तो जो मैं अपने लिए चाहती हूँ मुझे फिर औरों को भी इसी प्रकार से करना होगा। तो चाहे बचपन का हो, चाहे जवानी का हो, कुछ भी हो, जो कुछ हमने जमा करके रखा है, आज हमको डिसकंटेंट, बिटरनेस की फीलिंग्स आ रही है, हम असंतुष्ट है, हम नाराज है, इस कारण से बार बार रिएक्शन भी हो रहा है और हम उस कड़ी समझ नहीं पा रहे हैं। बात है बिल्कुल छोटी, रिएक्शन है बड़ा जबरदस्त, परंतु ये छोटी सी बात की बात नहीं है, जो इतना पोल्यूशन हमारे अंदर जमा हो चुका, पॉइजन भर गया है, इस कारण से ये रिएक्शंस हो रही है। तो स्पिरिचुअल मार्ग पर जब हम अपने मन को साफ बैठ के करते हैं, एक तो है अपने संकल्पों को साफ करना, दूसरा है अपनी बुद्धि को हम साफ रखना, कौन सी बातें हम अपनी इस बुद्धि के तिजोरी में जमा रखती हैं, फिर तीसरा है अपने चित को साफ करना, जो भी हमारे मेमोरीज है उसको हम क्लीन करते जाएं, और यदि हम फॉरगिवनेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो सारा ही पास्ट का कचरा हमने अपने पास जमा करके रखा है जो हमको बहुत बैड फीलिंग दे रहा है आज का, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों इस तरह का
क्यों
चल
हमें प्रॉब्लम आती है, और जैसी वैसी सिचुएशन दोबारा आती है वो सब कुछ इमर्ज हो जाता है।
लैक ऑफ फॉरगिवनेस में ये भी बात आती है कि जैसे कि हम उसकी वीकनेस को और मजबूत बनाते जा रहे हैं, परंतु हमने फॉरगिव किया मीन्स उसके प्रति बहुत शुभ भावना रखी, तो मैंने उस आत्मा को मदद की आगे बढ़ने के लिए,
और कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आती गई उस आत्मा के प्रति जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जहाँ एंगर है, जहाँ फॉरगिवनेस नहीं है, वहाँ रिजेक्शन भी तो होगी।
बिल्कुल,
आई डोंट फॉरगिव यू मीन्स आई रिजेक्ट यू।
हाँ, और उस आत्मा को वो फीलिंग भी आती है, तो जो नजदीक का संबंध हो जिसमें हमारा प्यार का लेन देन हो, जिसमें हमारा सहयोग का लेन देन हो, वो संभव नहीं हो पाता। परंतु यदि हमने दिल से फॉरगिव किया तो जो उनके गुण है वो हम अपने कार्य में भी सहयोग दे करके और आगे कार्य को बढ़ा सकते हैं। हमारे गुण उनों के गुण इकट्ठे होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होंगी,
डेफिनेटली,
तो बहुत अच्छा कार्य होगा।
अच्छा, ये तो बात जयंती बहन हुई फॉरगिवनेस की, कि आई फॉरगिव, देयर आर टाइम्स व्हेन आई सीक फॉरगिवनेस, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वन, माय ईगो लाइक It doesn't allow me to seek forgiveness. I don't even know how to ask for forgiveness. Third, दो aspect हो गए। एक तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। दो, मुझे पता भी है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे माफी मांगनी है। तीसरा, मैं माफी मांग भी रहा हूँ, मुझे माफी नहीं मिल रही है। The other person is not ready to forgive. These are the three situations. Which again created a lot of chaos and pain and hurt in my life.
जी, पहले तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपना अभिमान आता, जिस कारण से हम अपनी गलती को महसूस भी नहीं करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जितना हम देही अभिमानी अथवा अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का हम अभ्यास करेंगे, तो उतना वो ईगो छूटता जाएगा और हम उस गलती को समझ भी सकेंगे और फिर हमारे में वो हिम्मत भी होगी कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने कुछ नुकसान की बात की है हम उससे हम माफी भी मांग सकेंगे। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मैं भगवान से भी माफी मांगू फर्स्ट, परंतु सेकंड मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं, भगवान से शक्ति लेकर के, रियलाइजेशन पावर से। रियलाइजेशन का प्रूफ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि हमने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है तो वो हम अपने आप को भी माफ कर सकते हैं और फिर हम दूसरे से माफी मांगते हैं तो वो देने के लिए भी तैयार होते हैं। नहीं तो आपने ये भी कई बार सिचुएशन देखा होगा, इट्स इजी टू से आई एम सॉरी, सॉरी करते जाओ, गलती करते जाओ, सॉरी करते, इट गोज ऑन। कोई उसमें सॉरी में मीनिंग नहीं होती
नहीं
है
कुछ भी।
हाँ, कुछ चेंज नहीं है और जैसे कि कुछ सॉरी में कुछ भावना ही नहीं है, परंतु रियली मैं रियलाइज करके चेंज हो जाऊं तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी वो मेरा चेंज देख करके मुझे दिल से माफ करेगा। और यदि कोई ऐसे सिचुएशन भी है जहां कोई मुझे माफ ना भी करे तो मुझे थोड़ा धीरज रखना होगा, वो प्रूफ देखने चाहते हैं कि आगे ये क्या करते हैं। तो यदि कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि वास्तव में इसका परिवर्तन है तो वो दिल से हमको भी फॉरगिव करेंगे, वो शब्दों में ना भी आए क्योंकि उन्हों को भी अपना ईगो होता, शब्दों में बेशक ना भी आए परंतु हमको फीलिंग आएंगे कि हाँ सब कुछ अभी ठीक हो गया।
धीरे धीरे अगर बोलचाल में, अगर बोला भी नहीं, बोल शब्दों में नहीं भी बोला तब भी वो एहसास होने लगता है। एक और जो फॉरगिवनेस का एस्पेक्ट है वो परमात्मा से मांगने का। कई बार हम मंदिर में जाते हैं या पूजा कर रहे होते हैं या किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं, हम अपने आप को इतना गिराकर भगवान से माफी मांगना शुरू कर देते हैं कि मैं तो खराब ही हूँ, मैं तो बुरी आत्मा हूँ, मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैं गलतियां ही गलतियां करता जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना डेस्परेट लेवल पे अपने आप को, वी स्टार्ट फीलिंग दैट वे दैट आई एम सो बैड एंड ओनली गॉड कैन फॉरगिव मी, यू नो, एंड टेक मी टू दैट हायर लेवल कि मैं यहां से निकल पाऊं, मैं गड्ढे में गिरा हुआ हूं। बहुत बार हमारी बातों में ये होता है। तो वो जो एक अपने आप को ही इतना गिराकर फॉरगिवनेस सीख करना, वो एक एस्पेक्ट और परमात्मा से रियल सेंस में फॉरगिवनेस ऑफ डूइंग माय यू नो कर्मास व्हिच वर नॉट आई वाज नॉट कॉन्शियस अबाउट, और अभी ज्ञान में होते हुए भी जो मैं गलतियां कर जाता हूं अगर उसकी फॉरगिवनेस, वो दो एस्पेक्ट क्या होंगे?
जहां तक मैंने देखा है जो इस तरह से मंदिर में जाकर के ये शब्दों में कहते हैं वो वहां तक की बात वहां रहती है, बाहर निकलते हैं सेम थिंग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वही का वही आ जाता। तो मुझे लगता है, मैं शायद सिनिकल हूं थोड़ा ज्यादा, परंतु मुझे लगता है कि ये एक रिचुअल बन गया है। परंतु जब ज्ञान की शक्ति से, प्रकाशता की शक्ति से हमें सचमुच रियलाइज होता है कि इन विकारों के कारण हम कितने गिरे हुए थे, परंतु बाप हमको कितना ऊंचा उठा रहा है, परंतु जो मैंने गलतियां की है या आज तक भी जो गलतियां हो रही है, यदि हम परमात्मा से रियलाइजेशन की शक्ति लेकर के और परिवर्तन की शक्ति लेकर के कुछ उसमें परिवर्तन करें, फिर मैं अपने बाप को कहूं आई एम सॉरी, तो वो मानेगा कि हाँ मैं दिल से मैं सॉरी कह रही हूँ और आगे के लिए फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी। यदि भगवान मुझे फॉरगिव करता है फिर मुझे दोबारा वो गलती करने के लिए अलाउ नहीं है। तो ये फर्क हो जाता है, एक रिचुअलिस्टिक बात करना और दूसरा रियलाइजेशन से बाद में परिवर्तन लाना।
And I really want to ask, this is what a lot of people want to know, क्या परमात्मा हमें माफ करता है? क्योंकि कई बार हमने जब कार्मिक अकाउंट्स की बात की है, कार्मिक लॉज की बात की है कि हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा अगर इंटरवीन कर देता है तो वो जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है वो खरोंच में बदल जाता है। बहुत बार लोग ये कहते हैं, ये बात कहते हैं, तो क्या ये संभव है और वो संभव कब हो सकता है?
मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि परमात्मा क्षमा का सागर है, और जिस तरह से मैं बता रही थी रियलाइजेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से हम भगवान से माफी मांगते हैं, वास्तव में वो हमें माफ कर देता। जो हमारा कर्म का हिसाब किताब है वो चुकत हो जाता, और जिसको कहते हैं कि सूली जैसे बात एक छोटे से कांटे के समान आ जाती। कईयों को ये अनुभव होगा कि कोई एक्सीडेंट होने जा रहा था परंतु बिल्कुल बच गए, या बहुत कुछ बड़ी बात होने वाली थी परंतु छोटी सी मामूली सी बात हो गई। उसको मैं मानती हूँ कि जब हमने इतना प्यार से, सच्चाई से भगवान से माफी मांगी होंगी, भगवान हमें हर प्रकार से अवश्य मदद करता।
बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हमारी अपनी पहचान अपने साथ हो और परमात्मा की सही पहचान हो। कई बार हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी गॉड, लेकिन वी डोंट इवन नो कि क्या है, कहाँ है। तो जहां सही पहचान का हमारे पास माध्यम है, हमारे पास तरीका है, हमारे पास है वो सारा ज्ञान, उसको जानते हुए अगर हम चलते हैं इस बात पर आज की इस पूरी बातचीत के लिए, जिस तरह से आपने हमें बताया कि फॉरगिवनेस एक्चुअली है क्या, क्षमा सचमुच में एक ऐसा शक्ति है अगर हम कहें, जो ना सिर्फ मुझे एम्पावर करती है कि मैं दूसरे को क्षमा भी कर सकता हूं बल्कि उसे भी अपलिफ्ट कर पाऊंगा। दिस इज द बिगेस्ट आई थिंक एस्पेक्ट ऑफ फॉरगिविंग, कि ना सिर्फ मैं अपने आप को हायर पेडेस्टल पे लेके जाऊं बल्कि उसके पेडेस्टल को भी मैं उठाऊं,
औरों को भी मैं आगे बढ़ाऊं।
बिल्कुल जयंती बहन, आज इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर हम देखें तो अभी तक हम ये मानते थे कि माफ करना मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान के ही हाथ में है, मैं कैसे माफ कर सकता हूं। लेकिन हमने समझा कि अगर हम ये देखते हैं कि भगवान हमें हमारी हर गलती के लिए माफ करता आ रहा है और हमें कितना कुछ दे दिया है, तो मुझ में भी एक क्षमता है अगर मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ लूं। और ये भी समझना जरूरी है कि मैं अगर माफ करूंगी तभी तो मैं आगे चल पाऊंगी, नहीं तो मैं ही उस मकड़ जाल में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया हुआ है, मैं उस दुख से दुखी रहकर अपनी आने वाली जिंदगी को भी और खराब कर दूंगा। तो क्षमा करना मेरे लिए भी जरूरी है, और फिर परमात्मा से जो क्षमा मांगने वाला एस्पेक्ट है, या हम जब अपने किसी फ्रेंड से या किसी और से भी हम फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम परमात्मा की शक्ति लेकर अपने में वो परिवर्तन लेकर आए। तो जहां वो परिवर्तन नजर आने लग जाएगा, जहां वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, वहां फॉरगिवनेस हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ना सिर्फ लोगों से बल्कि परमात्मा से भी। आज आपको यही कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपका अपना है, बहुत सी बातें होती हैं जो आपके मन में है, तो आप अपने सभी सवालों के जवाब ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स में जाकर उनको तलाश सकते हैं। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिनसे जो परिवर्तन आप तलाश रहे हैं वो संभव है। अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आने वाली घड़ियों में कुछ और बातें करेंगे, जीवन के कुछ और एस्पेक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के सभी कार्यक्रम अब VCDs पर भी उपलब्ध है। 10 VCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है। अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक इनर स्पेस के नाम पर इस पते पर भेजें। इनर स्पेस 355 तरुण एनक्लेव, आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा, दिल्ली 34। आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और किस वक्ता की VCDs ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें। डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको VCD का सेट मिल जाएगा।
ओम शांति।